दिन भर 5 दिसंबर बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के कथित मध्यस्थ को भारत लाए जाने पर बोले प्रधानमंत्री,
भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है, अबे राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात कब तक पहुंचेगी।
यूपी डीजीपी ने जताई बुलंदशहर हिंसा के पीछे साजिश की आशंका। दुनिया जहान में फ्रांस में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों की पड़ताल।
ये लोग कहते हैं कि हमारी डीजल की गाड़ियां हैं, हम गाड़ी खरीद ही नहीं सकते।
और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट कल से।
हमारे जितने भी बैट्समैन हैं उनके पास उतनी एबिलिटी है कि वो अकेले मैच को पलट सकते हैं, उस चीज में मुझे 120%।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाया जा चुका है। उनके भारत आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान की एक चुनावी रैली में कहा कि राजदार आ गया है, अब सारे राज खुलेंगे। खबरों के मुताबिक क्रिश्चियन मिशेल को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उन्हें 5 दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया गया। तुर्की के अभियोजन पक्ष ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 2 करीबियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इन दोनों पर पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या में शामिल होने के आरोप हैं। अहमद अल असीरी और साउद अल कहतानी को पहले इस मामले की जांच के चलते अपने अपने पदों से बर्खास्त किया जा चुका है। बीबीसी से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी मिशेल बैशलेट ने कहा कि इस मामले की जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्द से जल्द होनी चाहिए। मिशेल ने कहा,
We call for an international investigation. We said it publicly that only a...
हमने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात कही है। हमने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हम इस मामले में सिर्फ सऊदी और तुर्की की जांच को काफी नहीं मानेंगे। हम सच्चाई सामने लाना चाहते हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच का होना बेहद जरूरी है। ये थे संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी मिशेल बैशलेट के शब्द। यमन सरकार के प्रतिनिधि हूती विद्रोहियों के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वीडन पहुंचने वाले हैं। अगर ये शांति वार्ता आगे बढ़ती है तो इस दिशा में पिछले 26 सालों के भीतर ये पहला कदम होगा। हूती विद्रोहियों की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही स्टॉकहोम पहुंच चुका है। अरब फाउंडेशन थिंक टैंक की वरिष्ठ विश्लेषक फातिमा अलसरार यमन से ही ताल्लुक रखती हैं। उनका कहना है कि ये बातचीत शुरू होने वाली है। फातिमा ने कहा,
I think we have to really temper our expectations about the talks in Sweden.
हमें लगता है कि स्वीडन में होने वाली बैठक के लिए सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। मुझे लगता है कि इस बैठक के बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। हालांकि ये इस दिशा में पहली बार उठाने जाने वाले कदम हैं। ये सब संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों से ही संभव हो सका है। ये थे फातिमा अलसरार के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन के एक नागरिक जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात में जासूसी के आरोपों की वजह से जेल में बंद कर दिया गया था, उन्होंने BBC को बताया है कि जेल में मानसिक उत्पीड़न इस कदर बढ़ गया था कि उन्हें आत्महत्या करने के ख्याल आने लगे थे। PhD के छात्र मैथ्यू हेज को UAE में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पिछले हफ्ते उन्हें रिहा कर दिया गया और वे ब्रिटेन वापस लौट आए। मैथ्यू ने बताया कि उनसे अरबी भाषा में एक बालिया बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए और उस पर क्या लिखा था ये उन्हें नहीं मालूम। सूडान के सांसदों ने देश के संविधान में बदलाव करने पर सहमति जताई है, जिसके जरिए देश के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर साल 2020 के बाद भी लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने रह सकेंगे। साल 2005 में लागू हुए सूडान के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति 2 बार ही देश का राष्ट्रपति बन सकता है, जिसकी वजह से बशीर को अब इस्तीफा देना होगा। इसी से बचने के लिए संविधान में संशोधन किया जा रहा है। बशीर 30 साल पहले तख्ता पलट करके सत्ता में आए थे। भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश की वृद्ध महिला यूट्यूबर का निधन हो गया है, वह 107 साल की थी। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की शाम की सभा दिन भर, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित मध्यस्थ क्रिश्चियन मिशेल को मंगलवार देर रात दुबई से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। क्रिश्चियन मिशेल को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रिश्चियन मिशेल कई राजनेताओं के राज बेपर्दा कर सकता है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मिशेल पर कांग्रेस नेताओं का नाम लेने का दबाव बना रहे हैं। गुरप्रीत सैनी की रिपोर्ट।
चुनावों के मौसम में सत्तारूढ़ भाजपा को विपक्षी कांग्रेस को घेरने के लिए एक और मौका मिलता दिख रहा है। यूपीए के जमाने में हुए 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर समझौते में भ्रष्टाचार के अभियुक्त को दुबई से दिल्ली लाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में कहा कि अब कई राज फाश होंगे।
हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था, भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात कब तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी।
अगस्ता वेस्टलैंड मामले का बिचौलिया बताए जा रहे क्रिश्चियन मिशेल को मंगलवार देर रात दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ था। चुनावी माहौल के बीच मिशेल को भारत लाए जाने से ये मामला सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने कहा कि जिन लोगों को लाया जाना चाहिए था उन्हें भूलकर सरकार उस व्यक्ति को ला रही है जो पहले से ही दबाव में होने की बात कहता रहा है।
नीरव मोदी नहीं आए भारत, मेहुल चोकसी जो प्रधानमंत्री जिनको भाई कहते हैं वो नहीं आए, विजय माल्या नहीं आए, और उनके साथ साथ उसी दुबई में रहते हैं दाऊद इब्राहिम वो नहीं आए, और उस आदमी को लाया गया जो पहले ही कह चुका है कि हमको सीबीआई के जरिए मोदी जी दबाव डलवा रहे हैं कि हम कांग्रेस के नेताओं का नाम ले लें। राजनीति रोटी सेकने के लिए, इलेक्शन नजदीक है, इसीलिए भारत के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से खुलकर ये काम कर रहे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक खबर के साथ अपने ट्विटर पर लिखा कि क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। पिछले कई महीनों से रफाल सौदे पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हमले झेल रही सरकार इस हेलीकॉप्टर डील के जरिए पलटवार करने के मूड में है। 2019 में होने वाले चुनाव से कुछ महीने पहले मिशेल को भारत लाया जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खासी राजनीतिक अहमियत वाला हो सकता है, क्योंकि इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर हैं। गुरप्रीत सैनी, बीबीसी दिल्ली।
बुलंदशहर हिंसा मामले में कई अनसुलझे सवालों के बीच अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई और समाचार चैनल न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने बुलंदशहर हिंसा के पीछे षड्यंत्र की आशंका जताई है। उन्होंने कहा, वहां जो हुआ वो सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं था बल्कि साजिश थी। वहां गायों के कंकाल कैसे पहुंचे, उन्हें कौन और क्यों लाया, किन परिस्थितियों में वे पाई गईं, कई सारे सवाल इस घटना को लेकर उठ रहे हैं। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की बुलंदशहर से इस घटना को कवर करके हाल ही में दिल्ली लौटे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से, और पहले यही पूछा कि यूपी के डीजीपी ओपी सिंह के इस बयान के क्या मायने समझे जाएं।
कुलदीप, उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनका आज का बयान, मैं कहूँगा सोमवार के बाद से सबसे अहम बयान है किसी प्रशासनिक अधिकारी या आला पुलिस अफसर की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पहली बार कहा है कि इस मामले में कोई साजिश भी हो सकती है। डीजीपी का ये कहना कि साजिश हो सकती है, ये इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 2 दिनों से जांच जारी है। पुलिस ने अभी कुछ उसके डिटेल्स नहीं जारी किए हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ये भी है कि एक पुलिस अफसर की हत्या हुई है, बहुत ही बर्बर तरीके से हत्या हुई है। एक उग्र सी भीड़ ने थाने को घेर कर आग लगाई है, अगर कहें कि पुलिस वालों को खदेड़ खदेड़ा है वहाँ से, और भीड़ में जो एक युवक थे सुमित, उनकी भी मौत हुई है। तो इसलिए अब ये मामला अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 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 पूरे मामले को कई चीज़ों से जोड़ कर देखा जा रहा था, शायद उसमें थोड़ा नैरो डाउन हो मामला और हम जांच जो है वो किसी एक ठोस सुराग की तरफ इशारा करे।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी आज इस बारे में सूचना दी गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि गोकशी के संबंध में कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं उनको, लेकिन उसमें इंस्पेक्टर की जो हत्या हुई उस संबंध में कोई जिक्र नहीं।
ये भी बड़ा चौंकाने वाला बयान था क्योंकि उस बयान में सब लोग इंतजार कर रहे थे कि जो प्रदेश की राजनीतिक लीडरशिप है उसकी तरफ से क्या बयान आता है इस तरह के मामले में, आखिर एक पुलिस अफसर की मौत हुई है। लेकिन जो चीज़ उस बयान में नहीं आई, शायद बहुत से लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो ये था कि इस तरह की हिंसक कार्रवाइयों का पब्लिक जो अपने हाथ में एक तरह से कानून ले लेती है और कानून के खिलाफ जो मुहिम छेड़ देती है उसकी निंदा ना करना काफ़ी चर्चा का विषय है।
एक आखिरी चीज़ और कि अब इस मामले की जांच के संबंध में वे कौन से बिंदु हो सकते हैं जिन पर आने वाले कुछ दिनों में नज़र रहेगी?
कुलदीप, सबसे अहम बिंदु मेरे हिसाब से ये है कि आखिर जो गांव था जहां पर ये गायों के कंकाल बरामद हुए हैं वहां पर करीब एक दर्जन गायों को पहुंचाया कैसे गया, आखिर कैसे आई? हमारे खुद गांव में जो गांव के लोग हैं उन्होंने मवेशी भी पाल रखे हैं, कईयों से बात हुई, कईयों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, कईयों ने ऑन द रिकॉर्ड बात की, किसी का भी कोई मवेशी मिसिंग नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक छोटे से गांव में जहां खेत के बीच में एकदम सुनसान इलाका है, चिड़िया के चहकने की आवाज़ भी सुनाई देती है दूर तक, वहां पर एक दर्जन गायें अगर हम ये मान भी लें कि कथित तौर पर काटी गईं किसी रात को या किसी तड़के सुबह, तो गांव में उससे कोलाहल मच जाना चाहिए था, उससे एक शोर मच जाना चाहिए था, वो किसी ने क्यों नहीं सुना? तो सवाल ये है कि अगर गायें वहां की नहीं है तो फिर गायें कहां की हैं, और यही मुझे लगता है कि सबसे अहम जांच का विषय होने वाला है।
जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और परसों यानी शुक्रवार को मतदान होगा। इस बीच दक्षिणी राजस्थान में गुजरात से सटे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 11 प्रत्याशी खड़े करके मुख्य सियासी पार्टियों को चौंका दिया है कि पार्टी जनजाति क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची को ठीक से लागू करने की मांग कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि इस नई पार्टी का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये चुनावी समीकरण बिगाड़ सकती है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
अरावली पर्वतमाला की भुजाओं में पसरे घने जंगलों वाले इस इलाके में जब नई पार्टी की पदचाप सुनाई दी, सियासी पार्टियां चौंक गई। यह मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है। मेवाड़ में जनजाति के लिए विधानसभा की 16 सीटें आरक्षित है। यह पहला मौका है जब भील, गरासिया और डामोर जनजाति को किसी ट्राइबल पार्टी की छतरी के नीचे जमा होने का आह्वान किया जा रहा है। इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा कहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों ने जनजाति की उपेक्षा की है।
संविधान ने जो कुछ दी है उसको सुनिश्चित करें और हम भागीदारी चाहते हैं, हर चीज में भागीदारी चाहते हैं। हमारी भागीदारी नगण्य है, पूरा एरिया पलायन के कगार पर है। यहाँ की सरकारों ने आज तक पानी की व्यवस्था नहीं, अपील करते हैं सरकारों से, हमारे लिए सुचिंतकों से कि वो अब हमारी आवाज को सुने। हमें मजबूर होकर के हमें भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन करना पड़ा।
कहीं महुआ और सागवान के घने जंगल हैं, कहीं नदी नाले और पर्वत पठार हैं। वे कभी महाराणा प्रताप की सरपरस्ती में लड़े तो कभी गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेज से लोहा लिया, लेकिन अब वे कहते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया। डूंगरपुर में बीजेपी नेता सुदर्शन जैन कहते हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
नहीं, मैं 100% इस बात को नकारता हूँ। जितना हमारी पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार की सरकार में जितना इस क्षेत्र के अंदर विकास के काम हुए, इतना आजादी के बाद कभी नहीं। हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बड़े बड़े हमने पुलियां, रोड बनाए हैं, ऐसे पहले कभी बने नहीं।
जनजाति समाज की एकता का नारा बुलंद कर रहे लोगों का कहना है कि कांग्रेस में अब वो भावना नहीं रही जो स्वाधीनता संग्राम के वक्त थी। मगर उस इलाके में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शंकर यादव कहते हैं,
कांग्रेस की भावना आज भी वही है, दलितों का उत्थान, आदिवासियों का उत्थान, पिछड़ों का उत्थान, किसानों का उत्थान, 36 वर्ग का उत्थान। कांग्रेस उसी बेस पे चल रही है जिस बेस पे पहले थी, कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। कांग्रेस आज भी गरीब की पार्टी मानी जाती है और गरीब को गणेश मानकर कांग्रेस सेवा करती है और इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत गहरी है, खासकर आदिवासी और दलितों से कांग्रेस का आत्मा और शरीर का संबंध है।
पिछले कुछ समय में जनजाति समुदाय का युवा वर्ग रास्ता रोक रोक कर अपने नेताओं से सवाल पूछने लगा है। डूंगरपुर में पत्रकार नितेश गर्ग कहते हैं यह इस क्षेत्र के लिए नई बात है, इसका चुनावी समीकरण पर प्रभाव पड़ सकता है।
जो शिक्षित युवा है उनको एक विकल्प मिला है कि वो कांग्रेस या बीजेपी, जो परंपरागत इनको दो ही पार्टियां मिलती थी, ट्राइबल पार्टी ही नाम है इसका, तो इनको अपने जाति की नाम की वजह से इनको अपनी पार्टी इनको अनुभव होता है, इसलिए बहुत हद तक मत का प्रभाव पड़ेगा बीटीसी पार्टी की वजह से।
कुदरत की दौलत से ये इलाका मालामाल है, मगर इसकी विकट भौगोलिक बनावट सरलता से रास्ता नहीं देती है, फिर चाहे वो सियासत हो या कारोबार। नारायण बारेट, BBC जयपुर।
फ्रांस को दुनिया भर में अपने खान पान, फैशन, संस्कृति और भाषा के लिए जाना जाता है, मगर यह खूबसूरत देश पिछले दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से चर्चा में रहा। राजधानी पेरिस से लेकर छोटे कस्बों तक प्रदर्शनों की ऐसी गूंज उठी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। आखिर किन कारणों से इतनी बड़ी संख्या में लोग फ्रांस में सड़कों पर उतरे, इस बार दुनिया जहान में आदर्श राठौर इसी की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहां, ये आवाज है फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध स्मारक आर्क द ट्रायंफ के बाहर नारे लगाते येलो वेस्ट मूवमेंट में शामिल प्रदर्शनकारियों की। ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और सरकार की कथित अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सत्रह नवंबर 2018 को फ्रांस में येलो वेस्ट या येलो जैकेट मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो उसके पड़ोसी देशों इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड तक फैल गया। बाकी जगह तो ये इतना असरदार नहीं हुआ, लेकिन फ्रांस में अब तक इस आंदोलन की धमक महसूस की जा रही है। दो हफ्तों से भी ज्यादा समय तक पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन क्या वजह रही जो लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए? पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नराव ने बताती हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन कौन शामिल हुआ।
गवर्नमेंट कह रही है लोगों को इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करने का एनकरेजमेंट देना चाहिए और डीजल को कम करना चाहिए, तो डीजल के ऊपर टैक्स लगा दो। और ये लोग कहते हैं कि हमारी डीजल की गाड़ियां हैं, हम गाड़ी खरीद ही नहीं सकते, तो हम इस चक्की में हम पिस रहे हैं। जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग शहर के बीच में रहते हैं और उनकी जो हैसियत है वो हमारे से कहीं बढ़कर है। तो ये जो मूवमेंट है वो नीचे मध्यम वर्ग का प्रिंसिपली उनका मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो एक औरत ने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा दिया था कि ये जो नए टैक्सेस पड़ रहे हैं उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमें इसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, और ऐसा वो आंदोलन चल पड़ा।
तेल के दाम पूरी दुनिया में बढ़े हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस में आबादी का एक बड़ा हिस्सा आंदोलन करने पर मजबूर हो गया? वैजू नराव ने बताती हैं कि सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हुई है जो काम तो शहरों में करते हैं, मगर शहरों में रिहाइश महंगी होने के कारण उन्हें दूर के इलाकों में रहते हुए रोज शहर आना जाना पड़ता है।
यहाँ पर जैसे आप बॉम्बे में, अगर सेंट्रल बॉम्बे में रहना चाहें तो उस वक्त बहुत रेंट्स ऊंची होती है, तो आपको कहीं दूर सबब में जाके रहना पड़ता है। वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता नहीं है। काफी बार ये लोग, जैसे लोग डोंबिविली या मीरा रोड या कहाँ कहाँ रहते हैं बम्बई के बाहर, और कोलाबा तक उनको आना पड़ता है रोज काम करने के लिए, वैसी ही इन लोगों की परिस्थिति है। तो इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते हैं, उनको गाड़ी रखनी पड़ती है। काफी बार ये कपल्स होते हैं जो काम करने वाले, दोनों मियां बीवी काम करते हैं, और ये ऐसे लोगों का मूवमेंट है जो सिटी सेंटर में नहीं रहते हैं लेकिन दूर के इलाकों से आते हैं।
फ्रांस में डीजल के दाम पिछले 12 महीनों में 23% से अधिक बढ़ गए हैं। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ, मगर फ्रांस में कीमत कम नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने हाइड्रोकार्बन टैक्स बढ़ा दिया है। तो क्या इस बात के लिए युवा राष्ट्रपति मैक्रों के कम अनुभव को जिम्मेदार माना जाए जो वो लोगों के दर्द को नहीं समझ पाए? दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा बताती हैं कि इसके और भी कारण हैं।
इसमें मैक्रोन की दूरदर्शिता को हम इतना दोष नहीं दे सकते जितना ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, मार्केट फोर्सेस हैं, वो काफी हद तक इन चीजों को डिटरमिन करती हैं। पर इसको समझने के लिए हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा कि किस तरीके की आर्थिक व्यवस्था है, कितनी हद तक वो इंटीग्रेट हो रही है, किस तरीके की ग्लोबल फोर्सेस इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो काफी चीजों का मिला जुला असर जो है वो ये येलो वेस्ट में दिखाई देता है।
हालांकि पेरिस में रह रही वरिष्ठ पत्रकार वैजू नराव ने मानती हैं कि कहीं न कहीं मैक्रों की पृष्ठभूमि भी ऐसी है कि शायद वो निम्न मध्यम वर्ग की समस्याओं को समझ नहीं पाए।
ये तो बिल्कुल सही है कि उनका जो अनुभव है बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरी भी ये बात है कि जिस क्लास से प्रेसिडेंट मैक्रों निकले हैं तो वो बिल्कुल एलिटिस्ट ग्रुप जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल ऊपर का जो ग्रुप है उसमें वो शामिल है। अपने खुद के पैसे काफी है, उनकी फैमिली भी काफी रईस फैमिली हुई है, इसलिए आम लोगों के साथ उनका कांटेक्ट बहुत कम रहा है और उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि अपने आप को जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं उनके जूते पे खड़े होके उनकी जो कठिनाइयां हैं वो खुद एक्सपीरियंस करके उनके साथ सहानुभूति दिखाए।
दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां सरकार की नीतियों और फैसलों का विरोध न होता हो और उन्हें लेकर आंदोलन न होता हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसे आंदोलनों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिला होता है। लेकिन येलो वेस्ट मूवमेंट में कोई नेता नहीं है और न ही राजनीतिक पार्टियां इसकी कमान अपने हाथ में ले पाईं। फिर ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया? डॉक्टर शीतल शर्मा बताती हैं कि फ्रांस के लोग अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक हैं।
फ्रांस में ट्रेड यूनियनिज्म बहुत स्ट्रांग रहा है हमेशा से, क्योंकि फ्रांस के लोग जो हैं वो बहुत, जो लेबर क्लास है एटलीस्ट, वो बहुत गठित रहती है। आप देखेंगे तो पेरिस में या फ्रांस के बाकी शहरों में, छोटे छोटे गांव में भी आपको इसके काफी उदाहरण मिल जाएंगे कि लोग जो हैं संगठित रहते हैं और अपने अधिकारों के लिए काफी लड़ते हैं। पर जो ये है पर्टिकुलर येलो वेस्ट, इसको कहा जा रहा है कि बहुत दशकों के बाद एक इस स्तर पे होना, जो पेरिस में भी हुआ और आसपास के छोटे छोटे शहरों में भी हुआ है, ये कुछ है जो इतिहास में अलग हुआ है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण ही ये आंदोलन हुआ। भले ही ईंधन के दाम इस आंदोलन के तात्कालिक कारण हों, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार वैजू नराव ने बताती हैं कि इसके पीछे सरकार की वो नीतियां भी हैं जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरी करती जा रही हैं।
तो ये लोग कह रहे हैं अगर आप ये जो टैक्सेस आप लगाना चाहते हो तो आप प्लीज थोड़ा ग्रेडेड टैक्सेशन लगाइए ना, जो सबसे वीकर सेक्शन है उस पे जोर ना लगे। मतलब अमीर लोग हैं, जब वो एयरप्लेन लेते हैं उस एयरप्लेन फ्यूल के ऊपर आप क्यों नहीं टैक्स लगाते हो, या जब जहाजों के साथ आप अपना माल जो भेजते हो या लेके आते हो उसका तो फ्यूल इतना गंदा है उसके बारे में कोई बात नहीं करता और हमारे ऊपर फट से टैक्स लगाया जाता है। यहाँ की सिस्टम ये है कि अगर आप सैलरीड वर्कर हो या किसी बिजनेस के साथ काम करते हो तो आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट है वर्क प्लेस पे आने जाने का, उसका 50% आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और आपको खुद की गाड़ी निकालनी पड़ती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो फीलिंग है, जो सेंटिमेंट है, वो बहुत कि हमारे ऊपर थोड़ी अनइक्वल, हमें अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रही है।
डॉक्टर शीतल शर्मा भी मानती हैं कि मैक्रों सरकार को अमीर और गरीब के फर्क को दूर करने के लिए काम करना होगा।
कहने की बात ये है कि अगर डिसकंटेंट है तो वो आप एकदम से तो उसको एड्रेस कर नहीं सकते अनलेस आप चीजों के प्राइसेस को डाउन लाएंगे, क्योंकि समाज में जैसे जैसे इन आर्थिक नीतियां अनफोल्ड होती जा रही हैं, दिस इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो पोलराइजेशन है अमीर और गरीबों के बीच वो काफी बढ़ रहा है और वो है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा मैक्रों सरकार को।
डॉक्टर शीतल शर्मा मानती हैं कि ये आंदोलन एक सबक है, क्योंकि जनता में बढ़ते असंतोष को समझदारी के साथ शांत नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं।
फ्रेंच वे ऑफ लाइफ बहुत ही अलग है, जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी तरह की वैल्यूज को प्रमोट करता है। यहाँ पे अगर कोई इस तरीके की आर्थिक इनइक्वालिटी के इंडिकेटर्स आते हैं, या लोगों में असंतोष आता है तो इसको सरकारों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बट ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को माइग्रेंट्स के साथ या बाहर देश के आए लोगों के साथ अगर इंटीग्रेट कर दिया तो वो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा जो फिर कम्युनिटीज को कम्युनिटीज के अगेंस्ट पिच कर देगा।
येलो वेस्ट मूवमेंट के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ और हिंसा की जिसके कारण ये आंदोलन थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन फ्रांसीसी सरकार को झुकना पड़ा और उसने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सों को 6 महीने के लिए टाल दिया है। लेकिन सवाल बना हुआ है कि जब इस आंदोलन के नेता ही नहीं थे तो कैसे मान लिया जाए कि सरकार के इन कदमों से आंदोलनकारी शांत हो जाएंगे और दोबारा सड़कों पर नहीं उतरेंगे। ये सवाल न सिर्फ फ्रांस सरकार को परेशान कर रहा है बल्कि अन्य देश भी चिंतित हैं कि कहीं उनके यहाँ भी कोई ऐसा ही बिना नेतृत्व वाला आंदोलन खड़ा न हो जाए।
दुनिया जहान आदर्श राठौर की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। अब समय है खेल समाचारों का। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड में खेला जाएगा। इससे पहले T20 सीरीज में दोनों टीमें बराबरी पर रही थी। रिपोर्ट सुनिए आदेश कुमार गुप्त से।
हमारे जितने भी बैट्समैन हैं उनके पास उतनी एबिलिटी है कि वो अकेले मैच को पलट सकते हैं और उस चीज़ में मुझे 120% फेथ है और उनको भी अपनी एबिलिटी में फेथ है। आई थिंक हम लोगों का सबका काम है कि फील्ड पे जाके परफॉर्मेंस देना और अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं करूंगा, अगर और कोई बैट्समैन उस पोजीशन में कंट्रीब्यूट करने के तो वो करेंगे।
ये शब्द है भारत के कप्तान विराट कोहली के जो अपने बल्लेबाजों के दमखम से पूरी तरह वाकिफ है। अब उनकी परीक्षा कल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने जा रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में होगी जिसका पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाएगा। एडिलेड के विकेट को लेकर क्रिकेट समीक्षक विजय पल्ली कहते हैं,
एडिलेड ऐसा लगता है कि जैसे भारत का कई बार देखा गया है कई सीरीज में होम ग्राउंड की तरह, तो थोड़ा स्लो होगा औरों के मुकाबले, पर यहाँ पे एडिलेड में आपको बाउंस और टर्न इन दोनों की आप उम्मीद रख सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर भारत अपने स्लो बॉलर्स पे जोर देगा तो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आए।
और अब भारत की टीम की बात करें तो आज ही 12 सदस्य टीम का ऐलान हुआ जिसमें गेंदबाजों के तौर पर मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन शामिल हैं। यानी भारत 4 गेंदबाजों के साथ खेलेगा। कमाल की बात है कि गेंदबाजों ने तो पिछली 2 सीरीज में जान लड़ा दी और अब हालात ये हैं कि 5वां गेंदबाज तक टीम में नहीं। भारत के पूर्व बल्लेबाज परवीन आमरे कहते हैं,
मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि उनके 2 सीनियर बैट्समैन नहीं है, उनकी बॉलिंग अटैक अच्छा है, बट हमारे लिए इंडियन टीम के लिए पॉजिटिव इतना है कि हमने 2 सीरीज में हमारी बॉलिंग बहुत बढ़िया हुई है। ये हुआ है कि हम अपोजिट टीम को 2 बार आउट निकाल सकते हैं, ये क्षमता हमारे टीम में है, हमारे बॉलर्स में है और मुझे लगता है कि जब जब हमारे ओपनिंग स्टैंड मिले हमारी टीम अलग खेली है। फर्स्ट सेशन भी खेलना अभी बहुत क्रिटिकल रहेगा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में और वो हम जब कर जाते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ेंगे कि हम सीरीज जीत सकते हैं।
वैसे भारत की सलामी जोड़ी केएल राहुल और मुरली विजय होगी, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी और रोहित शर्मा से कौन होगा ये कप्तान विराट कोहली पर निर्भर करेगा जो खुद बेहद अच्छी फॉर्म में है। अब देखने की साल 1947-48 से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रही भारतीय टीम उस टीम से जीत कर एक नया इतिहास रच पाती है जिसमें स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं है। भारतीय टीम को आज भी पहली टेस्ट सीरीज की जीत का इंतजार है।
रिपोर्ट सुन रहे थे आप आदेश कुमार गुप्त से। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए सिंधु वासिनी से।
बीबीसी समाचार। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत ले आया जा चुका है और उन्हें 5 दिन की CBI कस्टडी में भेजा गया है। तुर्की के अभियोजन पक्ष ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 2 करीबियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इन दोनों पर पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या में शामिल होने के आरोप हैं। यमन सरकार के प्रतिनिधि हूती विद्रोहियों के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वीडन पहुंचने वाले हैं। अगर ये शांति वार्ता आगे बढ़ती है तो इस दिशा में पिछले 26 सालों के भीतर ये पहला कदम होगा। ब्रिटेन के एक नागरिक जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात में जासूसी के आरोपों की वजह से जेल में बंद कर दिया गया था, उन्होंने BBC को बताया है कि जेल में मानसिक उत्पीड़न इस कदर बढ़ गया था कि उन्हें आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे। सूडान के सांसदों ने देश के संविधान में बदलाव करने पर सहमति जताई है। जिसके जरिए उमर अल बशीर साल 2020 के बाद भी तीसरी बार राष्ट्रपति बने रहेंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया अजीत सारथी ने। अब कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत और बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।